देवियों सज्जनों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। कोई भी इंसान हो, हम अकेले नहीं जी सकते। अब इंसान नहीं, कोई भी प्राणी हो, एनी लिविंग बींग, एनी लाइफ, सो टू सर्वाइव वी नीड्स अदर्स, वो थिंग्स हो या बींग्स हो। हमें नेचर की सपोर्ट चाहिए, हमें लोगों की सपोर्ट चाहिए, मां बाप की भी सपोर्ट चाहिए, अलग अलग स्टेज में अलग अलग लोगों की सपोर्ट चाहिए। और लाइफ में मोस्ट ऑफ टाइम हमारे वो लोग सपोर्ट करते हैं जिनको हम जानते भी नहीं है, अचानक सपोर्ट करने आ जाते हैं, या अभी अभी जान पहचान हुई है। तो मेरे पास कितने भी कुछ हो, बहुत पैसा हो, बहुत पावर हो, तो भी मैं सुख से शांति से सर्वाइव नहीं कर सकता जब तक मुझे दूसरों का हेल्प ना मिले। और इसीलिए बड़ी जरूरी होता है कि हम दूसरों के प्रति वो ग्रेटफुल की सेंस रखें, भाव रखें। इसीलिए नहीं कि हम किसी को खुश करना चाहते हैं, इट्स नॉट टू प्लीज समवन, क्योंकि ग्रेटफुलनेस, जो ग्रैटिट्यूड है, जो सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड है, ये अपने आप में हमें बड़ा सुख देता है। जो लोग इस एटीट्यूड को कल्टीवेट करते हैं या बाय नेचर जो ग्रेटफुल होते हैं हर वो छोटी छोटी चीजों के लिए जो लाइफ में मिलता है, रिकॉग्नाइज करते हैं लाइफ में होने वाले वो हर छोटी छोटी अच्छी चीजों को, ये कोई सोशल क्वालिटी नहीं है कि आप सोसाइटी में अच्छे पॉपुलर बनते हैं अपने सर्कल में। ये हमारे इनर सिस्टम को भी डेवलप करता है, हमारे अंदर की खुशी को, हैप्पीनेस को बढ़ाता है, हमारा मन ज्यादा प्योर होता है, ज्यादा निश्चल होता है, स्टिंटलेस होता है। और उससे होता क्या है कि मन ज्यादा शांत होता है, खुश होता है। इवन जब प्रॉब्लम से भी लाइफ में आते हैं तो हमारा एजिटेशन का लेवल बहुत कम लेवल का होता है कंपेयरिंग टू अदर्स। तो इसीलिए ये बड़ी जरूरी है कि हम लाइफ में, बहुत सारे लोग बाय नेचर हर छोटी छोटी चीजों के प्रति ग्रेटफुल रहते हैं, बहुत सारे लोगों को कल्टीवेट करना पड़ता है। इसीलिए नहीं कि अगेन कि हमें कोई किसी को प्लीज करना है, इसीलिए कि इट शुड बी पार्ट ऑफ माय नेचर, इससे मुझे फायदा मिलता है और अनेक फायदा मिलता है, साइकोलॉजिकल हो, फिजिकल हो, बहुत तरह के फायदे होते हैं। वो आपके स्ट्रेस को कंट्रोल करता है, आपकी खुशी को बढ़ाता है, आपकी लाइफ में छोटी छोटी चीजों में आपको बेटर फील कराता है। एक लेडी ने एक मैगजीन में अपनी एक स्टोरी लिखा, कैसे उसकी लाइफ चेंज हुआ, ट्रांसफॉर्म हुआ। जैसे आप सब हैं वर्किंग, वो भी ऐसे ही एक वर्किंग लेडी थी, सुबह 5-6 बजे उठ के भागना है ऑफिस, वहां से आना है, बच्चों का ख्याल करो, परिवार का ख्याल करो, ऑफिस में किस झंझट से पाओ। तो हमेशा आते समय जब ऑफिस से आती थी तो गाड़ी में उसके मन में हमेशा कुछ ना कुछ नेगेटिव थॉट्स आते रहते थे, खराब ख्याल आते रहते थे। ऑफिस में जो कुछ हुआ, बॉस ने डांटा, प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ, और कोई प्रॉब्लम है, घर जाने पर बच्चे शुरू हो जाएंगे, ये चाहिए वो चाहिए। अब लाइफ जब बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा टाइट होता है तो खुशी कहीं मिलती नहीं है। तो कार में ड्राइव करते आते समय ट्रैफिक लाइट थोड़ा ज्यादा हो जाए तो इरिटेशन होने लगता है, सामने कोई गाड़ी थोड़ा स्लो चलाने लगे तो भी इरिटेशन होने लगता है, तो इस तरह उसका लाइफ बड़ा मिजरेबल होने लगा। तो उसने अपने आप को चेंज करने की कोशिश की, क्या करूं कि इस बिजी लाइफ में भी, इस हौच पौच वाले लाइफ में भी कहीं कुछ खुशी ढूंढ पाऊं। जनरली हम ट्राई करते हैं कि सारी दुनिया बदल जाए तो मैं खुश रहूंगा, बच्चे ठीक से आ जाएं, ऑफिस वाले ठीक हो जाएं, घर वाले ठीक हो जाएं, रेड लाइट ठीक टाइम पर ग्रीन हो जाए, सामने वाले गाड़ी ठीक से चलाएं, तब खुश होऊंगा। पर वो सब चीजें उसने ऑप्शंस को ट्राई किया, आखिर में उसने सोचा कि मैं जब ऑफिस से घर आऊं, घर आने के बाद बच्चों के साथ फिर ढंग से बात नहीं कर पाती हूं, पति के साथ, बाकी परिवार के मेंबरों के साथ, तो आई नीड टू चेंज समथिंग इन माई सेल्फ। तो उन्होंने एक एटीट्यूड चेंज किया कि ऑफिस गाड़ी में आते समय जो दिन भर में जो अच्छी अच्छी चीजें उनके साथ घटी उनको मैं याद करूं। तो गाड़ी में आप खाली बैठते हैं, भजन गाना सुनते हैं या कुछ सुनते हैं, पर प्रॉब्लम है कि ज्यादातर समय हम सुनते नहीं है, वो रेडियो बजता रहता है, सीडी बजता रहता है, दिमाग में और कुछ चलता रहता है। तो मैं रिकलेक्ट करूं आज दिन भर मेरे साथ अच्छी चीजें क्या हुई, बुरी चीजें नहीं, जो अच्छी चीजें हुई। सुबह उठा तो चाय बड़ी अच्छी थी, छोटी छोटी चीजों को मैं समेटूं, कलेक्ट करूं, अब माइंड में उसको रिकलेक्ट करूं, रात को जो सोने जाऊं मैं लिखूं कि मेरे साथ आज दिन भर क्या क्या अच्छी चीजें हुई। उस लेडी ने लिखा अपने एक्सपीरियंस से महीनों भर के बाद कि मेरे लाइफ में पूरी तरह एक ट्रांसफॉर्मेशन आया, प्रॉब्लम्स वही हैं, सिचुएशंस वही हैं, पर आज मैं ज्यादा स्टेबल हूं, कूल हूं, काम हूं, पीसफुल हूं, हैप्पी हूं, क्योंकि मैं अपने अंदर वो जो सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड लाया कि मेरे लाइफ में अच्छाइयां भी बहुत हो रही है। आई नीड टू रिकॉग्नाइज इट। मोस्ट ऑफ टाइम हम अपनी, अगर दिन भर में सैकड़ों इंसिडेंट्स होते हैं, चार पांच खराब इंसिडेंट हो जाते हैं, तो उसको हम रिकलेक्ट करते रहते हैं और लाइफ को, सोसाइटी को, दुनिया को कोसते हैं। बाकी जो अच्छी चीजें हुई, ज्यादातर अच्छी चीजें, उनको हम भूल जाते हैं, वहीं से हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स या दुख शुरू होने लगता है। इसीलिए ग्रेटफुल होने के लिए यह जरूरी नहीं है कि हम हमेशा, कोई मेरे लाइफ में बहुत बड़ी चीजें घटे, कोई बहुत बड़ी चीज में अचीव कर लूं, तब जाकर मैं मानूं कि आई एम ग्रेटफुल टू एक्स वाई जेड। मेरे पास बहुत कुछ है इसीलिए मैं ईश्वर के शुक्रगुजार हूं, ग्रेटफुल हूं, नहीं। लाइफ में जो भी अच्छी अच्छी छोटी मोटी चीजें आती हैं, भगवान ने हमें शरीर दिया है, अगर मेरा शरीर ठीक ठाक है, दोनों हाथ मेरे हैं, दोनों पैर हैं, मेरा ब्रेन काम करता है, आंखें देख सकता है, वाणी बोल सकता है, तो यकीन मानिए आपको पूरी जिंदगी उतने छोटी इतनी चीजें के लिए भी ग्रेटफुल हो जाए तो भी कम पड़ेगा, क्योंकि करोड़ों लोग हैं। जो आपके लिए नॉर्मल चीज है, हमारे लिए बड़ा रेगुलर चीज है, उनके लिए बड़ा प्रेसियस है। जिनके हाथ नहीं है उनको पूछो हाथ की क्या कीमत है, जो ब्लाइंड है उनसे पूछो आंखों की क्या महत्व है। तो अगर हमारे पास आंखें हैं, कोई करोड़ों रुपए देकर के कोई आंखें खरीद सकता है क्या? एक संत थे, ये कहानी है। तो एक दिन वो गुजर रहे थे, बड़े साधु व्यक्ति, उन्होंने देखा एक यंग लड़का भीख मांग रहा था, भगवान के नाम पर दे दे, भगवान के नाम पर दे दे, बोलते हैं ना, दे दो। तो उसने कहा कि भाई साधु जी ने पूछा, क्यों भीख मांगते हो, क्या करें, गरीब हैं, मेरे पास कुछ है ही नहीं है, मां बाप को पालना है, मां बाप बुजुर्ग मां बाप हैं तो मांगता हूं। बोले तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है? बोले कुछ भी नहीं है। बोले ठीक है, मैं तुम्हें 10,000 रुपए दूंगा, तुम मुझे अपना एक हाथ दे सकते हो? 10,000 दूंगा। यंग बॉय ने बोला, कैसे क्रूएल हो, पैसा देने के लिए मेरे हाथ मांगते हो, चलो कोई नहीं, मैं 20,000 रुपए दूंगा, दोनों हाथ दे दोगे? पहले हाथ क्यों दे दूं ना, तुम्हारे पास हाथ है और मुझे जरूरत है। चलो मैं तुम्हें 50,000 दे दूंगा, तुम अपने दोनों पैर और दोनों हाथ दे दो। चलो हाथ पैर नहीं देख सकते हो, एक आंख दे दो। आदमी लाखों तक गया। लड़का सोचा, क्या आदमी पड़ गया, पागल आदमी, कितना क्रूर है, कितना क्रूएल है, मेरे हाथ पैर आंखें मांगता है पैसे देने के लिए। साधु जी ने कहा, बेटे तुम्हारे पास जितनी चीजें हैं वो तो करोड़ों के वैसे ही है, तू गरीब कहां से हुआ? तेरे पूछो उन लोगों को जिनके पास हाथ नहीं है, जिनके पास पैर नहीं है, जिनके पास आंखें नहीं है, ठीक है, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, इसके लिए मेहनत करो, काम करो, पर अंदर ये भाव मत लाओ कि मैं गरीब हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। जिस दिन हमारे पास जो कुछ है उसको रिकॉग्नाइज करना सीख जाए तो लाइफ विल बी फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड, और जिस दिन आपकी लाइफ फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड हो जाए तो आप खुशी से रहेंगे। इवन गरीबी में भी, दुख में भी, परेशानी में भी जीवन ज्यादा सुंदर होने लगता है। जो ईश्वर ने दिया है हमारे कर्मों के अनुसार, हमारी जैसी भी सिचुएशन है उसके अनुसार, कम है ज्यादा है उसके हिसाब से जितना भी दिया है। ऐसा नहीं है कि ग्रेटफुल होने के लिए आप किसी को मुंह में बोलना पड़ेगा थैंक्स, या किसी को कोई ग्रीटिंग कार्ड में लिख करके देना पड़ेगा कि थैंक यू सो मच। ये एक फीलिंग है, एक्सप्रेस करते हैं अच्छी बात है, नहीं भी कर पाते हैं, पर अगर हम इसको फील कर सकें, इस इमोशन को डेवलप कर सकें, ये हमारे अपने आप को ही ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। कैसी भी सिचुएशन हो, जो मेरे पास है पहले मैं उनको देखूं मेरे पास क्या है, फिर जो नहीं है उनके बारे में जब रोऊं तो वो फिर कम होने लगेगा। इस ग्रैटिट्यूड के अपोजिट है इन ग्रैटिट्यूड, थैंकलेस होना, और ये कीड़ा है जो डंसता है। और आप देखेंगे बहुत सारे लोग पूरी जिंदगी दुखी मिलेंगे आपको, उनकी बात करने के तरीके, हाव भाव, मिलना जुलना। लाइफ में बहुत, ऐसा नहीं कि उनके लाइफ में बहुत कुछ बुरा घटा है इसीलिए वो ऐसे हो चुके हैं, नहीं, सिर्फ इसीलिए कि उन्होंने अपने अंदर वो सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड को कभी कल्टीवेट किया ही नहीं है। पैसा भी है, इतना नहीं है कि बिल गेट्स के पास जितना हो, उतना है जितना उनके फ्रेंड सर्कल में दूसरे के पास कम बहुत हो सकता है। घर में प्रॉब्लम्स है उतने ही है जितने आसपास में किसी में हो सकता है, हो सकता है उनमें 10 फ्रेंड्स के घर में ये प्रॉब्लम ना हो पर 4 फ्रेंड्स के घर में हो सकता है। मतलब एक नॉर्मल लाइफ है, उसमें अप्स एंड डाउन्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, सब तरह की चीजें हैं। पर कुछ लोग मिलेंगे जिंदगी भर बड़े दुखी मिलेंगे, हर चीज में, उनके अहाव में, भाव में, स्वभाव में। तो जब अपने अंदर उस सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड को हम कल्टीवेट नहीं करते तो पूरा जीवन एक सूखा सा, कड़वा सा, खुद का जीवन, दूसरों का नहीं, अपना ही जीवन इट फुल ऑफ बिटरमेंट हो जाता है। सो ये लाइफ की जो हसल्स हैं उसमें खो जाना तो आसान है, क्या करूं लाइफ है, बिजी हूं, पढ़ाई बिजी है, जॉब करता हूं बिजी है, फ्रेंड सर्कल बिजी है, टाइम नहीं मिलता मां बाप के लिए, क्या करूं, टाइम नहीं मिलता उसको अप्रिशिएट करने के लिए कि मेरे लाइफ में आपने मुझे कहां हेल्प किया है। लाइफ बड़ा बिजी है और ऐसा बिजी लाइफ देवियों सज्जनों जिंदगी भर रहेगा उन लोगों के लिए जो ये समय नहीं निकाल पाते, ये टाइम नहीं निकाल पाते, जिनके लाइफ में जिनके कारण कुछ अच्छा हुआ है उनको अप्रिशिएट कर सके, उनको फील करा सके कि आप मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट हो। प्रॉब्लम्स तो सबके लाइफ में आते जाएंगे, पर हमारी प्रॉब्लम है कि हम उन चीजों के लिए ज्यादा रोते हैं जो हमारे पास नहीं है, जो हैं वो हमें दिखते नहीं है। वो बच्चों को देखते हैं ना अपने घर में, हंड्रेड सब टॉयज होंगे घर में, फरे परे होंगे, स्टोर चले जाओ पेरेंट्स के साथ रोना शुरू कर देंगे, टॉय चाहिए, एक भी तो नहीं है, कहां, अभी तो एक हफ्ते पहले अभी तो आपको दिया था, वो तो एक हफ्ते पहले दिया था ना, वो तो पुराना हो गया, खराब हो गया, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे फ्रेंड्स के पास देखो कितना कुछ है। ऐसा नहीं कि बच्चे रोते हैं, हमारी भी यही हालत होती है इस बच्चे की तरह मोस्ट ऑफ टाइम, कुछ लोगों का हमेशा, कुछ लोगों का कभी कभी। और जब हम भूल जाते हैं कि हमारे लाइफ में क्या अच्छी चीजें हैं, पेरेंट्स की क्या कंट्रीब्यूशन है, फ्रेंड्स का क्या है, नेचर का क्या है, कंट्रीज का क्या है, सोसाइटी का क्या है, गॉड की क्या है, और हम उस बच्चे की तरह हमेशा दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं। कुछ लोग गुलाब के फूल में कांटे देखते हैं तो कुछ लोग गुलाब के कांटों में गुलाब का फूल देखते हैं। इट्स अप टू अस कि हमें पेड़ में उस कांटों के बीच में गुलाब की उस खूबसूरती दिखता है या उस खूबसूरत गुलाब के चारों तरफ हमें कांटे दिखता है। अगर कांटे दिखेगा तो आई कैन नॉट एंजॉय द ब्यूटी ऑफ रोज। अगर आप उस गुलाब की ब्यूटी को एंजॉय करते हैं तो कांटे आपके लिए ज्यादा मायने नहीं रखें, पर लाइफ ऐसा ही है देवियों सज्जनों, ये गुलाब के पेड़ की तरह, इसमें ब्यूटी भी है, इसमें थॉर्न्स भी हैं, इसमें कांटे भी हैं, इसमें खुशी भी है और उसमें दुख भी है, दोनों मिक्सचर होते हैं। तो गुलाब चाहिए, ये भी देखो बड़ा मजेदार है, भगवान ने चीजें भी ऐसी बनाई है, कोई भी अच्छी चीज बिल्कुल इजीली एक्सेसिबल नहीं बनाया है। हमारे यहां कहते हैं वो चंदन का पेड़, पहले जमाने में जो सैंडलवुड होता है वो बड़ा पॉपुलर होता था, हर व्यक्ति यूज करता था, क्योंकि आजकल की तरह इतने फ्रेग्रेंस वगैरह सेंट वगैरह तो नहीं मिलता, तो लोग बॉडी में भी चंदन लगाते थे, खुशबू आता था, घरों में भी स्प्रे करते थे, आजकल हम मंदिरों में यूज करते हैं। तो चंदन की लकड़ी लाने जाओ, कहते हैं जहां जहां चंदन के पेड़ है वहां सांप बहुत होते हैं, अब पता नहीं ये सच है कि झूठ है। तो अगर आपको सांप से डरता, आपको अगर चंदन के पेड़ में सांप दिखे तो आप लाइफ लंग तो आप कभी चंदन यूज ही नहीं कर सकते हो। अगर सांपों के बीच में चंदन दिख जाए तो फिर आप यूज कर सकते हो। तो ये हमारे एटीट्यूड पर डिपेंड करता है कि हम लाइफ को किस तरह देखते हैं। सो व्हेन समथिंग इज डन दैट इज गुड, हेल्पफुल और लविंग, इट इज ऑफन ओवरलुक्ड, क्योंकि ये तो नॉर्मल है, ये एक्सपेक्टेड है, एंड ट्रीटेड एज समथिंग एक्सपेक्टेड, सो नो एक्नोलेजमेंट, नो ग्रैटिट्यूड। जरूरी नहीं कि हमेशा आप दिखाएं, दिखाना तो अच्छी बात है, पर नहीं भी दिखाएं अगर ये हमारे कैरेक्टर में, हमारे नेचर में आ जाए सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड, तो हमारा ओवरऑल कैरेक्टर भी बदल जाता है। तो फिर हम दूसरों को जज करते समय भी हमारा एटीट्यूड एक दूसरे टाइप का होने लगता है. पर मोस्ट ऑफन हम अपने लाइफ में मेरे साथ उसने क्या क्या बुरा किया वो पूरा याद रहता है. क्या क्या अच्छाइयां किया वो इजीली हम इसको भूल जाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं ये तो एक्सपेक्टेड है, ये तो उसको करना था. खास करके बच्चे, बहुत सारे बच्चे बड़े होने के बाद, कॉलेज जाने के बाद, टीनेज होने के बाद, मां बाप के प्रति बहुत सारे बच्चे इस तरह के भाव रखते हैं. पेरेंट्स ने कुछ किया तो क्या ज्यादा कर लिया, वो उनका काम है, दे हैव टू डू इट. तो उन्होंने बचपन में कभी डांटा था, मरा था, कुछ मांगा था दिया नहीं था, लाइफ में कुछ कंट्रोल किया, मैंने ये कार मांगी दी नहीं, मुझे अब ये चाहिए था दिया नहीं, वो सब याद है. पर ये हम इग्नोर कर जाते हैं कि पेरेंट्स ने हमारे लिए क्या क्या किया है. ये जो ओवरलुक करना, इससे किसी का नुकसान नहीं होता है, ना पेरेंट्स का, ना फ्रेंड्स का, ना सोसाइटी का. जो कुछ करता है वो कोई एक्सपेक्ट करके नहीं करता है. पर अगर हम ओवरलुक करने लगते हैं जो लाइफ में अच्छी चीजें होती है या कोई कराता है, तो हमारा लाइफ अपने आप मिजरेबल होने लगता है. फिर हमें खुशी कहीं नहीं मिलती है, हमेशा हमारे साथ होने वाले अन्याय के प्रति ज्यादा नजर जाता है, अच्छी चीजों के प्रति कम जाता है. इसलिए बहुत जरूरी है कि हम थैंकफुल हो. जब थैंकफुल होने लगे तो स्टार्टिंग फ्रॉम द ईश्वर से लेकर मां बाप से लेकर के उस अनजान अननोन पर्सन तक जो आपकी कहीं भी कभी भी अचानक हेल्प करने आ जाता है. आपकी गाड़ी खराब हो गई, या आप कहीं टूर में गए हैं, या कहीं बाहर गए हैं, अचानक कोई आदमी आता है आपको हेल्प करने के लिए. उस अननोन आदमी तक, जो भी लाइफ में वो पेरेंट्स हो, रिलेटिव्स हो, फ्रेंड्स हो, सोसाइटी हो, गवर्नमेंट हो, कंट्रीज हो, हम देशों के प्रति भी ग्रेटफुल होने की जरूरत है. तो हम शुरू करते हैं ईश्वर से. हमेशा प्रतिदिन सुबह उठें या शाम को सोने से पहले जरूर मन में भाव रखें कि अगर ईश्वर की कृपा नहीं होती तो मुझे इतना सुंदर बॉडी, जैसा भी शरीर मिला है, नहीं मिलता. क्या पता ऐसे मां बाप नहीं मिलते, ऐसा घर नहीं मिलता. ये बहुत जरूरी है कि हम ईश्वर के प्रति वो भाव पैदा करें. ईश्वर की भक्ति और कुछ नहीं है. जो पूजा हम करते हैं, भक्ति करते हैं, प्रेयर करते हैं, वो और कुछ नहीं है. सिर्फ इतना है कि ये ईश्वर तुमने मेरे जीवन में जो कुछ लाया दिया उसके लिए आई एम थैंकफुल टू यू. अब यकीन मानिए, अगर हमारी पूजा ईश्वर के प्रति भक्ति यहीं से शुरू होती है, इसी एटीट्यूड से शुरू होता है, तो लाइफ में बहुत कुछ अच्छे अपने आप होने वाले होते हैं. तो किसी के प्रति भी हम अगर ये भाव रखते हैं, ये सांसें जो हमारे पास हैं, ये कभी भी रुक सकता है. हम छोटी छोटी चीजों में, बाहर की चीजों में, दुनिया की चीजों में खुश होते हैं या दुखी होते हैं, पर ईश्वर ने हमारे शरीर को जिस तरह बनाया, आपकी जो ब्रेन है, जो न्यूरो सिस्टम है, आज तक भी उस पर इतना साइंटिफिक रिसर्च नहीं हो पाया कि हम अपने ब्रेन को या न्यूरो सिस्टम को 1% भी समझ पाए. इतना कॉम्प्लिकेटेड है ये. यही इंटेलेक्ट है, ब्रेन है, जिसके द्वारा लोग सुपर कंप्यूटर तक बनाते हैं, रोबोट्स बनाते हैं. वो रोबोट्स या सुपर कंप्यूटर आपके इस इंटेलेक्ट से ही बनता है. हम वो सुपर कंप्यूटर बनाने वाले पर तो बड़ा प्राउड फील करते हैं, बड़े अप्रिशिएट करते, थकते नहीं है, पर हम भूल जाते हैं उसको बनाने के पीछे जो इंटेलेक्ट है, वो इंटेलेक्ट तुम्हारा बनाया हुआ नहीं है, कोई इंसान ने नहीं बनाया, उस ईश्वर ने बनाया जिसने सूर्य को, चांद को, धरती को, आकाश को, संसार को, सबको बनाया। तो हमारे लाइफ का वो हर वो छोटी छोटी चीजें, आपकी माइंड, कभी सोचिए आपका माइंड कैसे फंक्शन करता है, हमारा ब्रेन कैसे फंक्शन करता है। मैं हाथ पैर नाक कान, इनमें कौन सा बॉडी पार्ट है जिसको अलग कर दे कि हमारा लाइफ बड़ा स्मूथली चलेगा। सब बड़ा वेल ऑर्गेनाइज्ड है, इंटेलेक्चुअली स्ट्रक्चर्ड है, बनाया हुआ है। किसने किया? पेरेंट्स ने नहीं किया, ये हमने नहीं किया, कोई साइंटिस्ट ने नहीं किया। सूरज गर्म है तो रात को चांद आपको ठंड रोशनी देता है, पानी आपके लिए अलग तरह के हेल्पफुल होता है, तो आग का अपना यूज है, फायर का अपना यूज है, एयर का अपना यूज है, सब आपके लिए बनाया हुआ चीज है। बट वी आर हैबिचुएटेड इन टेकिंग ऑल हिज ब्लेसिंग्स, ईश्वर की वो सारी कृपा व्यवस्था को फॉर ग्रांटेड लेने के लिए हम आदत पड़ चुके हैं। और उसका प्रॉब्लम क्या होता है, फिर हम कंपेयर करने लगते हैं, मेरे पास इतना है दूसरों के पास इतना है, मेरे पास ये कम है उसके पास ज्यादा है। ऑरेंज और एप्पल में कोई कंपैरिजन नहीं होता है, दोनों का अपना अपना यूज है। कभी वाटर और एयर में आप कंपेयर करेंगे, ठीक है पानी आजकल बिकने लगता है, प्यास लगता है तो पानी नहीं मिलता है तो उसका दर्द फील होता है, पर सांसें रुक जाएं तो हवा का एयर का अपना यूज है, पानी का अपना यूज है, जंगलों का अपना यूज है, पहाड़ों का अपना यूज है, झरनों का अपना यूज है, सूरज के अपनी यूज है, प्लैनेट्स के अपने यूज है, सबका अपना अपना फील्ड है। इसी तरह लाइफ में आने वाले अच्छे और बुरे घटने वाले चीजें दूसरों के लाइफ में होने वाले चीजों से कंपेयर करने से सिवाय दुख के कुछ नहीं मिलता। ऐसा नहीं कि सिर्फ बच्चे अपने फ्रेंड्स के साथ या टीनएजर्स अपने फ्रेंड्स के साथ कंपेयर करते रहते हैं, बड़े भी अपने ढंग से कंपेयर करते हैं, और इस कंपेरिजन का रिजल्ट क्या होता है, हम थैंकलेस होते जाते हैं। बच्चे थैंकलेस है क्योंकि देखो मेरे फ्रेंड्स के पापा मम्मी ने उसको, देखो वो सिक्स ग्रेड में पढ़ता है, उन्होंने उसको लैपटॉप दे दिया, आईफोन दे दिया, और आप कहते हो आपको हाई स्कूल में दूंगा, यू आर नॉट सो गुड, देखो उसके पेरेंट्स ज्यादा बेटर हैं मेरे पेरेंट्स से। ये क्यों आया? कंपेरिजन से। चीजों को कंपेयर करके हम पेरेंट्स को इग्नोर करते हैं, चीजों को कंपेयर करके फ्रेंड्स को इग्नोर करते हैं, चीजों को कंपेयर करके लाइफ में आने वाले अच्छी चीजों को हम इग्नोर करते हैं, और होता क्या है, एक थैंक्सलेस लाइफ जो फुल ऑफ मिजरीज और सैड्स और प्रॉब्लम्स होता है। इसीलिए बड़ी जरूरी है उस सेंस ऑफ थैंकलेस माइंडसेट से बाहर निकलने के लिए हम उस ग्रैटिट्यूड, सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड को डेवलप करें, हर वो छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढें और अप्रिशिएट करें कि मेरे जीवन में ये है, ये प्रभु का धन्यवाद है, जिन्होंने दिया उसका धन्यवाद है। और पूजा या प्रार्थना, आम भाषा में आजकल प्रेयर बोल देते हैं, जो ईश्वर की भक्ति है उसमें वही चीज होती। क्या चीज है? सरेंडर करना। नारद भक्ति सूत्र में वो भक्ति को डिफाइन करते हैं, सातु परम प्रेम रूपा, द सुप्रीम लव इज कॉल्ड भक्ति। बोलिए सुप्रीम लव क्या होता है? वो पतंजलि योग सूत्र में लिखते हैं, तस्मिन सति स्वसमर्पण। अपने आप को आप जब सरेंडर कर देते हैं, या अपने पास होने वाले अपनी कर्तृत्व को, डुअरशिप को जब आप सरेंडर करते हैं, वो ईश्वर प्रणिधान या भक्ति बनता है। यही प्रार्थना है, यही पूजा है। सरेंडरिंग तब तक पूरा नहीं होता है जब तक आप ये एक्सेप्ट नहीं करते हो कि जो कुछ भी है वो तेरे कारण है, वो तेरा है, मैं तुम्हारा हूं। ये जो ग्रेटफुलनेस है, ये सेंस जब अंदर नहीं आता है, आप कभी सरेंडर नहीं कर सकते हो। और जब तक आप सरेंडर नहीं करते हो ईश्वर के सामने, तब तक आपकी भक्ति कहीं भी 1% भी आगे नहीं बढ़ने वाली है। ऊपर से हम कितने जप तप प्रार्थना पूजा करें, अंदर अगर वो सरेंडरिंग का नेचर बना नहीं है, वो सेंस बना नहीं है, अपने आप को सौंपने का अगर भाव बना नहीं है, तो फिर भक्ति पूजा कहीं नहीं टिकती है। सिर्फ वो एग्जिबिटरी हो जाता है, दिखाने के लिए हो जाता है। तो पूजा का यही भाव है कि जो कुछ तुमने दिया है सब तुम्हारा है। अच्छा हो रहा है तो तुम्हारे कारण, बुरा हो रहा है भी तुम्हारे कारण। जो कुछ मेरे पास है वो तुम्हारे कारण है। और जब इस भाव के साथ हम लेकर चलते हैं, तो फिर हमारा लाइफ जैसा है वैसा नहीं रहेगा, ट्रांसफॉर्म्ड होगा। वो एक ज्यादा बेटर, ज्यादा हेल्दी लाइफ बनेगा। सोच में चेंज आएगा, एटीट्यूड में चेंज आने लगेगा। सो इसीलिए जो खुशी है वो इट डजंट डिपेंड ऑन हाउ मच वी आर गेनिंग। गेनिंग इज पार्ट ऑफ लाइफ, आता है जाता है। पर अगर सिर्फ लेने में, कुछ होल्ड करने में, गेन करने में हम खुशी ढूंढते, तो खुशी 2 मिनट में खराब हो जाता है। आप लोग सोचिए, जब आप पढ़ाई करते थे तो आप सोचते थे मुझे कोई जॉब मिल जाए। आपके दिमाग में कोई एक्सपेक्टेशन होगा कि इतने डॉलर्स एनम मुझे मिल जाए तो आई विल बी मोर देन हैप्पी। और आपकी स्टार्टिंग सैलरी उतना मिल गया, आप बड़े खुश हैं, मिठाई बांट रहे हैं, पार्टी दे रहे हैं। 1-2 साल के बाद अब आप अगेन दुखी हैं। क्यों? वो बढ़ ही नहीं रहा है, मेरे फ्रेंड्स आगे बढ़ गए, प्रमोशन हो चुका है, मेरा नहीं हो रहा है। अब वो मैटर नहीं करता है कि मैं महीने में, साल में 2 लाख कमा रहा हूं, 3 लाख कमा रहा हूं। प्रॉब्लम है कि मेरे जिनको मैं जानता हूं उनका प्रमोशन हो गया, उनके और सैलरी बढ़ गया, मेरा नहीं हो रहा है। वो भी हो जाए फिर नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप। गेन करने में जो खुशी होती है वो मोमेंटरी होता है। जो भी मिला, जैसे भी सिचुएशन है, मैं खुश हूं, अपने लाइफ से खुद को खुश रखने की कोशिश करना ये अलग चीज है। फिर क्या होगा? हमारा हार्ड वर्क चलता रहे, लाइफ में आने वाले जो भी सक्सेस है, फेलियर है, वो चलता रहेगा, पर हम अंदर से उतने ही बैलेंस्ड रहेंगे, खुश रहेंगे। अगर कोई काउंट करने लगे, जब भी हमें कभी डिप्रेशन हो, कि मेरे लाइफ में कुछ मिस है, प्रॉब्लम है, उसका सबसे बड़ा आइडिया साइकोलॉजिस्ट देते हैं, आप उस सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड को कल्टीवेट करो। कैसे करोगे? काउंट करो मेरे लाइफ में क्या क्या अच्छी चीजें हैं। वो काउंटिंग में डोंट फॉरगेट टू काउंट योर ब्यूटीफुल बॉडी, आपकी ब्रेन, आपके माइंड, आपके आंखें, आपके हाथ, आपकी अंगुलियां, आपके नाखून, आपके पेट, इसको काउंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत लोगों के पास ये भी नहीं होते हैं। अगर आप काउंट करने चलेंगे सचमुच, किसी दिन डायरी नोट करने लगेंगे, जैसे कि हम मेंटली कैलकुलेट करके रखते हैं मेरे साथ क्या क्या बुराइयां हुई है, क्या क्या बुरी चीजें हुई हैं, अगर हम वो अच्छी चीजों को नोट करने लगे, यकीन मानिए आपकी कैलकुलेटर फेल हो जाएगा। गरीब से गरीब आदमी के पास भी, दुखी से दुखी आदमी के पास भी इतने सारी अच्छी चीजें हैं, उसका कैलकुलेटर काम करना ही बंद कर लेगा। अगर वो दिमाग से कैलकुलेट करता है तो नहीं कर पाएगा, इतनी अच्छी चीजें लाइफ में है। तो जब आप इनको रिकॉग्नाइज करने लगे, रिकलेक्ट करने लगे, आप देखेंगे तो डिप्रेशन अपने आप काम होने लगेगा। लाइफ का एक छोटी सी चीजों में कहीं हम फेल हो गए हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम बढ़ चुका है, पर लाइन आगे बढ़ता जाएगा। इसीलिए जो स्मार्ट लोग होते हैं, जो नोबल लोग होते हैं, वो तो अपने लाइफ में आने वाले प्रॉब्लम में भी अच्छाइयां देख लेते हैं। हमने एक इंसिडेंट सुनी थी, किसी हॉस्पिटल में एक व्यक्ति को कैंसर था, ट्रीटमेंट चल रहा था, मेडिकल में एडमिटेड था और काफी दिनों के बाद ठीक नहीं हो रहा था। डॉक्टर ने कहा कि आपके पास अब सिर्फ एक महीना बचा है। जनरली जब जो इस तरह के कोई टर्मिनल डिजीज पर आते हैं और लास्ट स्टेज पर होते हैं तो डॉक्टर बोलते हैं एक दो महीने ज्यादा मुश्किल से। डॉक्टर को बड़ा मुश्किल होता है ऐसी चीजें बताना, क्योंकि वो भी इंसान होते हैं, उनको पता है कि जब ऐसा न्यूज आप देते हैं उस पेशेंट पर कितना प्रेशर पड़ता है, कितना स्ट्रेस होता है, उनके फैमिली मेंबर्स पर कितना स्ट्रेस होता है। तो नेक्स्ट डे जब डॉक्टर विजिट करने आया तो वो इसी एक्सपेक्टेशन के साथ आया कि जिसको मैंने सुनाया था कि एक दो महीने तुम्हारा लाइफ है और बचा है सिर्फ, वो दुखी मिलेगा, परेशान मिलेगा, काउंसिल करने की जरूरत पड़ेगी। तो आया देखा तो वो तो बेड पर ही नहीं था, इधर उधर घूम रहा है, लोगों के साथ बातें कर रहा है, मस्ती कर रहा है, जोक सुन रहा है, सुना रहा है। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया, कुछ बोला नहीं। अब देखा कि उस पेशेंट की लाइफस्टाइल चेंज हो गया, अब वो पार्क में घूमता है, दूसरे पेशेंट के साथ बैठता है, जो पेशेंट के जो फैमिली मेंबर्स आते हैं उनके साथ घूमता फिरता है। एक हफ्ते दो हफ्ते के बाद डॉक्टर ने पूछा, आपको दुख नहीं हुआ, आपको स्ट्रेस नहीं हुआ कि आप एक डेढ़ महीने में मरने वाले हो? तो पेशेंट ने बोला, दुख किस बात की, मैं तो फॉर्चुनेट हूं, प्रिविलेज्ड हूं, बहुत कम लोगों को ऐसा मौका मिलता है कि वो कब मरेंगे उनको पहले पता लग जाए। सो दैट वे आई कैन प्रिपेयर माई सेल्फ, मेरे पास एक महीना डेढ़ महीना है, मुझे जो करना है जैसे करना है मैं समेट सकूं, मैं अपने लाइफ को अपने ढंग से बना सकूं और मुझे पता है कि मैं जा रहा हूं। करोड़ों लोगों को पता ही नहीं चलता कब जाना, कोई प्रिपेरेशन ही नहीं होता है जाने के लिए, तो मैं प्रिविलेज्ड हूं। डॉक्टर ने कहा, पेशेंट आप नहीं हो, मैं हूं, तुमने तो मेरी लाइफ बदल दी। दिव्य सज्जनों, परेशानियों में भी अगर आप ढूंढ लेते हैं कि ये भी मेरे लिए कुछ काम का चीजें हैं तो आप बड़े स्मार्ट होते हैं। इसीलिए लेट अस बी ग्रेटफुल टू पीपल हु मेक अस हैप्पी, वो ईश्वर हो या जो लोग हैं, वो हमारे पेरेंट्स हो, सिबलिंग्स हो, रिलेटिव्स हो, फ्रेंड सर्कल हो, अगेन अननोन भी हो, जहां से भी हमें कोई हेल्प मिला है, जो भी लाइफ में जिसका कंट्रीब्यूशन है, वी नीड टू बी ग्रेटफुल। सबसे पहले तो मेंटली एक्सप्रेस करें ना करें, जब आप मेंटली ग्रेटफुल होते हैं तो वो आपके एटीट्यूड में झलकने लगता है, आपकी आत्मा ज्यादा खूबसूरत होने लगता है, मन ज्यादा प्यारा होने लगता है, क्योंकि मन निर्मल होता है। जो ग्रेटफुल नहीं होते हैं उनका मन ईगो से भरा होता है और बहुत सारी प्रॉब्लम से भरा होता है, और जिसके कारण वो खुद के लाइफ में भी बड़े दुखी रहते हैं। इसलिए वो पति हो पत्नी हो, हम सबसे ज्यादा जो ग्रांटेड लेते हैं, प्रॉपर ग्रांटेड लेते हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स को, मां बाप को, बच्चों को भी, बच्चों के कारण भी मां बाप को बहुत खुशी होती है। पति और पत्नी के रिश्ते में हम भूल जाते हैं, हम सोचते हैं कि वो तो है ही, इसलिए नहीं, जरूरी नहीं कि हर पति पत्नी ऐसा ही हो। अगर पति ख्याल रखता है या पत्नी ख्याल रखती है, बी ग्रेटफुल, वी नीड टू बी ग्रेटफुल। तो चाहे तो नहीं रख सकती थी, नहीं रख सकता, कंप्लेन बहुत है वाइफ के बारे में भी, हस्बैंड के बारे में भी बहुत कंप्लेन होते हैं, सबके हैं, बस छेड़ने की जरूरत है, एक चिंगारी जलाने की जरूरत है, इतने सारी निकलेंगी है? वो ठीक है, वो तो, पर जितने मजे लेकर हम उनकी क्रिटिसाइज करते हैं व दगाते हैं, उतने मजे लेकर जब हम उनको रिकॉग्नाइज करने लगे, फील करने लगे लाइफ में, तो रिलेशनशिप भी खूबसूरत हो जाता है। वो टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप हो, कस्टमर और सेल्समैन का रिलेशनशिप हो, आप कोई भी रिलेशनशिप हो, अगर इट्स इंक्लूडिंग, अगर ये सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड के साथ कनेक्टेड है, कंबाइंड है, फिर रिलेशनशिप और सुंदर हो जाता है। सो देर आर एंडलेस रीजन्स टू फील ग्रैटिट्यूड। अंडरस्टैंड, इफ एवर यू फील लाइफ ए डल, इट इज नॉट एज जूसी एज इट शुड बी, मोस्ट ऑफ यंग पीपुल थिंक लाइक दिस, इट इज बिकॉज ग्रैटिट्यूड हैज नॉट हैपेंड इन यू। व्हेन यू कैरी कॉजलेस ग्रैटिट्यूड विथ यू, लाइफ विल बी स्वीट ऑल द टाइम, इररेस्पेक्टिव ऑफ एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस, बैड और गुड। टाइम ज्यादा नहीं है, पर इसके फायदे कितने होते हैं अगर आप ग्रैटिट्यूड अंदर सेंस बनाते हैं। इमोशनली भी आप, आपकी गुड फीलिंग हमेशा बना रहता है, आप ज्यादा रिलैक्स्ड होते हैं, हैप्पी होते हैं। अब फिर आपकी फिजिकली भी, जब आप अंदर से खुश रहते हैं, काम रहते हैं, कूल रहते हैं, तो फिजिकली भी आप एक्टिविटीज बड़ा अच्छे ढंग से करते हैं, क्योंकि फिजिकली जो हम बीमार हैं वो सिर्फ फिजिकल कारण नहीं होता है, उसमें माइंड का भी बड़ा इफेक्ट होता है। सोशियली भी हम ज्यादा कनेक्टेड होते हैं अपने फैमिली से, फ्रेंड सर्कल से, सोसाइटी से। कैरियर भी ज्यादा अच्छा मैनेज होता है, क्योंकि हर किसी को अच्छा लगता है जब आप इसको अप्रिशिएट करते हो। और अप्रिशिएशन सिर्फ जनरली जो हम आजकल अप्रिशिएट करते हैं वो जस्ट कॉर्टसी टाइप का होता है, जिसमें वो सेंस नहीं झलकता है हर बात पर थैंक्स कहना। अगर वो दिल से आने लगे और सामने वाले को फील हो, इट्स फ्रॉम इट्स बटन ऑफ हार्ट, अगर उसके दिल से ये आ रहा है ये ग्रैटिट्यूड, यकीन मानिए उसका भी आपके प्रति जो करने की इच्छा है वो दुगुना हो जाती है। हेल्थ भी अच्छा होता है, आपकी पर्सनालिटी ज्यादा चार्मिंग होती है। लास्ट में एक बात कह के खत्म करेंगे, ये वॉल स्ट्रीट जर्नल के एक आर्टिकल में लिखा था, थैंक यू नो थैंक यू। एडल्ट हु फील ग्रेटफुल हैव मोर एनर्जी, मोर ऑप्टिमिज्म, मोर सोशियल कनेक्शंस एंड मोर हैप्पीनेस than those who do not. According to study conducted over the past decade, they are also less likely to be depressed. क्योंकि depression का भी कारण इसी में छुपा होता है, recognize नहीं करना मेरे life में क्या चीज़, and less envious, greedy and are alcoholics. हमारे Indian tradition में या वैदिक tradition में हम इसको तीन ऋण के रूप में लेते हैं, कि जीवन में हर व्यक्ति के तीन डेब्ट्स हैं, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण। देव ऋण ईश्वर से लेकर नेचर का हर वो एलिमेंट जिनके कारण मेरा लाइफ सस्टेन करता है। पितृ ऋण वो पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स जो मेरा टेक केयर करते हैं। ऋषि ऋण जो मेरे पास ज्ञान है, जो सोर्स ऑफ नॉलेज है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो जहां से भी शुरू हुआ, ऋषियों से, फिलोसोफर हो, साइंटिस्ट से लेकर मेरे क्लास टीचर तक, वो सारी जो परंपरा है उन सबके प्रति हमारा कोई ऋण है, उसको हर वो व्यक्ति को चुकाने की जरूरत है। चुकाने के लिए कुछ फाइनेंशियली कुछ करने की नहीं है, वो सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड लाना है। जब आपके अंदर वो सेंस आता है तो आप जो कुछ करते हैं वो सब ऋण चुकाना होता है। और उस ऋण चुकाने के लिए हमारे यहां पंच महायज्ञ की कहा व्यवस्था की गई, कि हर वो गृहस्थी व्यक्ति, हर वो व्यक्ति लाइफ में ये पांच चीजें जरूरी करे, और इनको उन्होंने यज्ञ का नाम दिया। ब्रह्म यज्ञ, ईश्वर के प्रति अपना डिवोशन बनाए रखना, अच्छे शास्त्रों को पढ़ना, देव यज्ञ, नेचर का केयर करना यज्ञ द्वारा और दूसरे उपाय द्वारा, पितृ यज्ञ, पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स का ख्याल रखना, केयर करना, मनुष्य यज्ञ, बाकी जो सोशल सर्विस करने वाले जो सोसाइटी में किसी ना किसी रूप में कंट्रीब्यूट करते हैं उनको हेल्प करना, और भूत यज्ञ, जो भी एनिमल्स हैं, इंस्टिंक्ट, कोई भी लिविंग बीइंग है, लाइफ है, उनका भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूशन है, उनका भी ख्याल रखना। इन पांचों चीजों के प्रति उस ग्रेटफुल बनने का नाम है, उस सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड का नाम होता है महायज्ञ। जो अंदर जब उस भाव आए फिर जो आपसे होगा वो यज्ञ होगा। इसी भाव के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू वेरी मच।
आदरणीय आचार्य जी, मातृशक्ति, सुधीजनों, भाई।